जयधवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सीते ओम नमः सीते सीताणं नमो वायर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मुनिर्परमर्थ विद्धर मुनिवर वीरैः सिद्ध विजयी यासन्तु आभयवदी पश्यौ सुयदेवया मच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगोवभावियो सम्मं आवहैनान सिद्धिं नानफलं चाविनिर्वाणं तो सुवदेवय मिनमो तिक्कुत्तोपणमियून भक्तिये ोच्छामि जहासुत्तम् चारित्रमोहस्य खवनमी। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुणधर भट्टार तथा यतिऋषव आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक में अभी हम चारित्रमोक्ष अपना देख रहे हैं और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 116 पर। हमने जो तीन मूल गाथाएं देखी थी अब चौथी मूल गाथा शुरू हो गई। चौथी मूल गाथा में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सब पुष्टि करने और वेदनी संबंधी की बात चल रही है, तो 113 पृष्ठ पर हम वो मूल गाथा का अर्थ देखते हैं। 129 नंबर की गाथा का अर्थ नीचे जो दिया है, 307 नंबर का पॉइंट है ना, कितनी गतियों भवों स्थितियों अनुभागों और कषायों में तथा तत्संबंधी कुष्ठियों और उनकी स्थितियों में संचित इस पूर्वबद्ध कर्म शपक के पाए जाते हैं। यानी कृष्टि को करने वाला और वेदने वाला जो क्षपक जीव है उसके जो पूर्वबद्ध कर्म पाए जाते हैं, तो पूर्व में कौन कौन से गतियों में बांधे थे, यानी बिल्कुल नियम से ये गति में बांधे ही थे ऐसा कह सकते हैं, कहीं कहीं कह सकते हैं कि उन पूर्व में गतियों में बांधे हुए कर्म अभी नहीं रहे ऐसा भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यानी यदि ऑप्शनल हो जा तो उसको भजनीय कहेंगे, होगा भी या नहीं भी होगा उसको भजनीय कहेंगे, भजनीय नहीं यानी नियम से होगा। तो यहाँ कहते हैं गतियों में क्या एक गति में बंधे हुए कर्म यहाँ पाए जाते हैं कि दो गति में कि तीन गति में कि चार गति में, उसके लिए वो कहते हैं भंग यानी चार को सेपरेट एक एक को देखेंगे, एक 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 कहेंगे तो चार हुए, दो दो का कॉम्बिनेशन कहेंगे, इसे एबीसीडी चार बातें एक दो तीन चार
चार गतियों
में कॉम्बिनेशन यानी अकेले एक गति के बंधे हुए हैं क्या दो दो गतियों के, अभी दो दो गतियों के तो कौन से गतियों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर तीन तीन फिर चारों का मिलकर ऐसे 15 भंग हो सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कितनी गतियों में बंधे थे कितने भवों में, क्या एक भव पहले के दो भव पहले के दस भव पहले, उसकी बात यहाँ बता रहे। स्थितियों में यानी कितने स्थितियों में वो पुष्टि रूप से पड़े हैं, कैसे अनुभागों में बंधे हैं और किस कषाय में बंधे
हैं।
स्थिति नहीं निषेक आपका क्या प्रश्न है, यहाँ आवाज आ रही है इसके अंदर। एक कल प्रश्न पूछे थे हमको, हमने उसको देखा था और उसके बाद 115 पेज पर यह बताया है कि ये जो चौथी मूल गाथा है उसमें 3 भाष्य गाथा है। तो ये 3 भाष्य गाथा में जो पहली भाष्य गाथा है 130 नंबर की 115 पृष्ठ पर सबसे नीचे उसका अर्थ बताया है। 2 गतियों में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय नहीं है। भजनीय नहीं है यानी नियम से है, भजनीय नहीं है यानी नियम से है। और जो 2 गतियों की अपेक्षा भजनीय है, ये कौन सी गति अभी नहीं बताएंगे, वो बताएंगे भी आगे चल। 2 गति के भजनीय ने हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उसको भजनीय कहेंगे। अब कहते हैं इंद्रिय मार्गना और काय मार्गना की भी बात पूछी थी उन्होंने, तो एक इंद्रिय संबंधी 5 काय मार्गनाओं में संचित हुए पूर्वोद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, यानी 5 स्थावर का जो है, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु का, एक वनस्पति का, एक जल का, उनमें जब थे यह जीव जब था तो वहां बांधे हुए कर्म उसके पाए जाते कि नहीं पाए जाते, तो कहते वो भजनीय है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। किंतु त्रस मार्गणा में भजनीय नहीं है, यानी त्रस मार्गणा में बांधे हुए वो तो नियम से है, क्योंकि ये त्रस जीव ही आगे चलकर क्षपक से नहीं चल रहा है, तो त्रस प्रयाण जो बांधा था वो तो है ही है। यहाँ पर भजनीय नहीं है का अर्थ समझ में आता है तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आए हैं 116 पृष्ठ पर, इसी का अर्थ अब देखेंगे। कल तो हमने केवल प्रश्न देखे थे, अब यहाँ उसका विस्तार देखेंगे। यह प्रथम भाष्य गाथा गति मार्गणा विषयक प्रथम पृच्छा, यानी कौन से गति में बंधे हुए ऐसा प्रश्न पूछा गया था, पृच्छा यानी क्वेश्चन, और भव ग्रहण विषयक दूसरी पृच्छा, यानी कितने भवों में बांधे थे ये दूसरा प्रश्न था, इनका निर्णय करने के लिए अवतीर्ण हुई है। अब इसका अर्थ कहते हैं, वह जैसे 200 गदीसु अभज्जानी ऐसा कहने पर 2 गतियों में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से होते हैं, बात बताई थी ना, भजनीय नहीं है का अर्थ नियम से होते हैं, इसलिए वे भजनीय नहीं ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके भजनीय पने का कारण नहीं पाया जाता। 200 भज्जानी पूर्वबद्ध कम्मानी ऐसा कहने पर नरक गति और देवगति में संचित हुए, नरक गति और देवगति लिए, नरक गति और देवगति में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के किसी के होते और किसी के नहीं होते। देखो बांधते ही है, परंतु जब वो अभी क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है वो तो मनुष्य गति का जीव है, तो हो सकता है वो तो नरक और देव में गया ही नहीं है, 3 इंच गति में लंबे काल से यहाँ आया है, तो उसकी कल हमें तो देव गति और मनुष्य गति लगाता है ना, अभी तो हमने विचार भी नहीं किया था। तो यहाँ 3 इंच गति और मनुष्य गति को भजनीय नहीं है का नियम से है कहते हैं, और देवगति नरक गति के बंधे हुए को भजनीय कहा। देखो लिया ना ये, परंतु नरक गति देवगति का लिया ना, तो बाकी 2 बची हुई उसमें ले लेना। देखो नरक गति और देवगति में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के किसी के होते और किसी के नहीं होते, इसलिए भजनीय है, क्योंकि उनके अवश्य ही होने के नियम का अभाव है, यानी वो होने ही चाहिए ऐसा कोई नहीं है। एइंद्रिय सुकाये चुच ऐसा कहने पर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक संज्ञा वाले यानी नाम वाले एकेंद्रिय जाति से प्रतिबद्ध, यानी उनकी जाति कौन सी है, तो एकेंद्रिय जाति वाले जीव है। 5 स्थावर कायिक मार्गणा कौन सी है, काय मार्गणा है, इसलिए उनको पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक आदि भेद बताए, मन वो किसके, तो एकेंद्रीय जाति के साथ है और वो स्थावर काय जीव है। उन जीवों में संचित जो पूर्वबद्ध कर्म होते हैं वे इस शपक के भजनीय हैं, क्योंकि उनके भी प्रकृति विषय में अवश्य होने का नियम नहीं पाया जाता। पांचवी स्थावर कायिक में भजनीय बताया। इसलिए इन पांच काम में से प्रत्येक विवक्षित काय में संचित मंचित दिख रहे क्या संचित पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, और नचत अशेषो ऐसा कहने पर त्रसकायिक जीवों में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से है, इसलिए उनकी अपेक्षा भजनीयपना संभव नहीं है। शंका, ऐसा किस कारण से है? उसका समाधान, क्योंकि त्रस पर्याय में आए बिना क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। गाथा सूत्र में त्रसकायिक ऐसा सामान्य निर्देश करने पर भी त्रसकायिक के एक भेद संगी पंचेंद्रियों में संचित पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय नहीं है, यानी नियम से है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय तो यहाँ पर आया है क्षपक में, किंतु द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय ही होते हैं, ये लगाए। इस प्रकार यह अर्थ विशेष भी इसी सूत्र पद में निलीन है, यानी गर्भित है, इंक्लूडेड है उसी में, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ प्रकृति में जिन मार्गणाओं के पूर्वबद्ध कर्म इस जीव के भजनीय कहे हैं, उनका एक भी परमाणु सभी कृष्टियों और उनके स्थिति विशेषों में नहीं प्राप्त होते। जहां जहां भजनीय कहा है तो उन पर्यायों में जो कर्म बांधे थे उसमें से एक परमाणु भी यहाँ उपस्थित नहीं, ये बात बताना चाहिए, क्योंकि उनकी असंभावना रूप पक्ष के स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं आता, यानी वो नहीं भी पाए जाए ऐसा हो सकता है। संभव पक्ष में तो यानी जो नियम से हो गए उसको संभव पक्ष कहा, किसी क्षपक के एक परमाणु पाया जाता है, किसी क्षपक के दो परमाणु पाए जाते हैं। जहां संभव है, पॉसिबिलिटी है, उसमें दो बातें। इस प्रकार जाकर अच्छा संभव पक्ष ने भजनीय में दो लिए, असंभव और संभव। इस प्रकार जाकर सभी कृष्टियों के सदृश धन वाले सभी स्थिति विशेषों में उत्कृष्ट रूप से अनंत परमाणु होकर प्राप्त होते हैं। ऐसा होता है ना, असंभव ने होता ही नहीं ऐसा कहेंगे तो वहां बांधा हुआ एक भी परमाणु अभी यहाँ उपस्थित नहीं है वर्तमान। हो सकता है तो एक भी हो सकता है वहां बंधे हुए, किसी वहां बंधे हुए में से दो परमाणु यहाँ है, किसी के वहां बंधे हुए लाख परमाणु है, किसी के असंख्यात है, किसी के अनंत है, यानी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज वेरिएबल है। वही तो, एक दो तीन चार करके अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो अनंत तक हो सकते हैं। संभव पद यानी जो हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकेगा, दो भी, और कितने तक, अनंत तक हो होंगे ही नहीं।
जो
भजनीय
है इसमें जो बना हुआ है तो इसमें भी दो लगा है ना,
भजनीय ने पॉसिबल है, इम्पॉसिबल में क्या लेना है, वो तो उसका एक भी परमाणु है। पॉसिबिलिटी में हो सकता है, हो सकता है तो कितने हो सकते हैं, एक दो और अनंत भी हो सकते हैं। परंतु जो पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय नहीं है, अभी भजनीय नहीं है वाले, इन्हें नियम से है, उनके अनंत परमाणु सभी कृष्टियों की सभी स्थितियों में सदृश धन रूप से होकर इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं। सभी कृष्टियों में होते दो लिए, भजनीय और जो भजनीय नहीं है, इन्हें नियम से। भजनीय में दो पक्ष किए, असंभव और संभव। संभव में एक हो सकता है, दो हो सकता है, अनंत हो सकते हैं। विशेषार्थ इसी का विशेषार्थ देखेंगे हम। प्रकृत में कृष्टि कारक और कृष्टि वेदक क्षपक जीव के, इतनी बात उठाई उन्होंने। इस पोजीशन पर क्या बात है, पहले बंधे हुए कौन से कर्म यहाँ वर्तमान में है, उसकी बात चल रही। किन गति आदि मार्गणाओं संबंधी भवों में बांधे हुए चारित्र मुनि आदि कर्म नियम से पाए जाते हैं, और किन गति आदि मार्गणाओं संबंधी भवों में बांधे हुए कर्म पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। भी लगाए ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस तथ्य का सांगोपांग विचार किया, उसी को तो भजनीय कहेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यह विचार करते हुए पहले मनुष्य और तिरिंच इन दो गतियों की अपेक्षा विचार किया गया है। क्षपक के मनुष्य गति तो होती ही है, क्योंकि उसके बिना संयत आदि पदों की प्राप्ति ही संभव नहीं है। अब रही शेष तीन गतियां, सो ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जो कर्मस्थिति काल के भीतर देवगति और नरगति को नियम से प्राप्त हुआ हो, वही जीव आगे कर्मस्थिति काल के भीतर मनुष्य भोग को प्राप्त कर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने का अधिकारी होता है। कर्मस्थिति का अर्थ समझे, एक बार कर्म बंधा है और कर्म बंधने के बाद वो सत्ता में पड़ा रहता है, यानी मान लेते एक इंद्रिय में बंधा हुआ, ये तिरंच गति, एक इंद्रिय के बाद छोड़ो, तिरंच गति में बांधा हुआ कर्म है, तो वो बांधा हुआ कर्म उसकी अपनी कर्म स्थिति प्रमाण तो रहेगा। अभी तो हम 40 कोड़ा कोड़ी वाली बात करते चारित्र मुनि, इसलिए क्योंकि यहाँ जो क्षपक है उसके दर्शन होने की कोई सत्ता नहीं है। अभी यहाँ तो है तो संज्वलन आदि है ना, यहाँ पर जो आया हुआ जीव है उसकी बात चल रही है। तो उसने तिरंच गति में बांधे थे कर्म, और वो मनुष्य गति में आकर मोक्ष जा सकता है, उसमें देव गति में नरगति में जाना ही पड़े ऐसी कोई बात नहीं है। हो भी सकता है, उसकी बात नहीं है, यहाँ कर्मस्थिति कंडीशन डाली। कर्मस्थिति यानी उसने बांधा था तो 40 कोड़ा कोड़ी का बंधा था, तो इतने साल तक उस समय बंधा हुआ, और फिर उसमें उसके अंदर वो तो नरक में देव में गए बिना मोक्ष भी जा सकता है। उसके पूर्व में गया था कि नहीं, उसकी बात नहीं है। अभी अभी जो बाकी है कर्म उसकी बात, खाली एक दो भोग की भी नहीं है। हाँ, यानी जो तिरंच गति में बांधा है मनुष्य में आया है, और मनुष्य में जो वो मोक्ष चला जाएगा। आप ऐसा कहेंगे लगातार मनुष्य में है तो भी, परंतु लगातार मनुष्य में क्या कर्मस्थिति प्रमाण रह सकता है? कर्मस्थिति यानी कितना, 40 कोड़ा कोड़ी तो होगा ना, कम से कम भी बांधा है तो अंत कोड़ा कोड़ी तो बंधेगा ही बंधेगा, मिनिमम मिथ्यात्व अवस्था में भी बांधा है या बाद में भी बांधा होगा, परंतु बाद में बांधा होगा तो समय दृष्टि लगातार मनुष्य में नहीं रह सकता। यानी जो लगातार मनुष्य में ही रहा है, ख्याल में मैं क्या बताना चाहती हूँ, कर्म स्थिति के अंदर मनुष्य 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 करके जो बांधा है वो मोक्ष नहीं जा सकता ना, उसके पहले की भी कुछ कर्म होगी कि नहीं होगी। कर्म स्थिति ये शब्द उन्होंने डाला है, वो महत्व का है। हाँ, वो तो मात्र कर्म स्थिति के, क्योंकि उस समय बंधा हुआ कर्म अभी प्रेजेंट है कि नहीं, इतनी बात वो अनादि से उसने सभी भोग अनंत बार किए हुए, उसकी बात नहीं है। अभी क्षपक है तो अभी जो उसके वर्तमान में सत्ता में कर्म पड़ा है वो कौन से गति में बांधा हुआ अभी पड़ा है वहां पर नियम से, ये बात हो रही है। यानी कर्म स्थिति जो बंधने के बाद इतने काल तक वो कर्म स्थिति प्रमाण काल तक परमाणु सत्ता में रह सकता है तो उसके अंदर वो मोक्ष जाना चाहिए। तो लगातार मनुष्य 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 भोग तो कर सकता है, हमने देखा ना कितने इतने बार, परंतु वहां उसको मोक्ष जाना है तो इतना कितना वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर कहो या अंतर कोड़ा कोड़ा कोड़ी सागर भी कहो, और ये कितने हो सकते हैं, पूर्वों में होगा, संख्यात वर्षों में होगा, तो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर के तो प्रमाण है ही नहीं। समझ में है बात क्या कहना चाहती हूँ?
ऐसा समझेंगे तो मान लेते हैं 10 गांव पूर्वों में जो बंधा हुआ है वो कर्म अभी तक सब श्रेणी चढ़ रहा है, जीव के अभी है पर जब 10 गांव में वो कभी मतलब गया ही नहीं होगा, गया होगा
पर अकेले मनुष्य गति में रहते हुए यही तो बात मैं पूर्व करना चाहती हूँ। अकेले मनुष्य में नहीं हो सकता तो उसने तिरंज मनुष्य हो सकता, यानी वहां ये है कि वह देव में गया ही नहीं, नरक में गया ही नहीं और तिरंज में असल आकर मनुष्य होकर मोक्ष चल रहा है। ये भजनीय में उसके नहीं बात लेना है हमको, जा सकता है उसकी बात नहीं, नियम से होने की बात चल रही है। शपक जीव में उस जीव के सत्ता में कौन सा बंधा, मुझे क्या कहना है, आप वो पॉइंट नहीं पकड़ रहे कोई भी चीज, वो नियम है, यानी तिरंज के तो नियम से हो गए देव का हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, नरक का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी देव नरक में गए बिना भी तिरंज में से मनुष्य में आकर वो मुंह जा सकता है, ये बात बताना। मैं इसलिए प्रूव करते केवल मनुष्य में नहीं हो सकता क्योंकि कर्म स्थिति प्रमाण मनुष्य में लगातार नहीं रह सकता, ये बात बतानी है। तिरंज और मनुष्य नियम से कर्म स्थिति प्रमाण मात्र तिरंज गति में रह सकता है, परंतु वहां रहने से मनुष्य में तो आना ही पड़ेगा, इसलिए क्षपक के लिए ये मनुष्य की भी कंडीशन तो आवश्यक है ही है, उसके पहले तिरंज को ले लिया। देखो इसका फिर पढ़ेंगे इसको, चौथी लाइन विशेषार्थ की, यह विचार करते हुए पहले मनुष्य और तिरंज इन दो गतियों की अपेक्षा विचार किया गया है। क्षपक के मनुष्य गति तो होती ही क्योंकि उसके बिना संयत आदि पदों की प्राप्ति ही असंभव, यानी संभव नहीं है, असंभव है। अब रही शेष तीन गतियां, सो ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं कि जो कर्म स्थिति काल के भीतर, देखो ये अगर शब्द नहीं डालते तो मैं ऐसा भी कह सकता मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव इतने भवन तक, पर इतने भवन तक वो भी कर्म स्थिति प्रमाण इतने भव उसमें नहीं निकाल सकता,
कर्म स्थिति सत्ता वाले ना।
कर्म यानी कर्म बंधने के बाद अधिक से अधिक उसकी स्थिति कितने काल तक या कम से कम कितने काल तक रहेगी उसको कर्म स्थिति कहेंगे। तिरंज में से भी आया मान लेते हैं फिर भी कितना है वो, तो एक सागर का उसने बांधा है पर उसके पहले का भी बंधा हुआ पड़ा है ना वहां पर। देखो अभी आगे पढ़ेंगे हम, यानी नरक गति को जो नियम से प्राप्त हुआ वही जीव आगे कर्म स्थिति काल के भीतर मनुष्य भोग को प्राप्त कर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने का अधिकारी होता है, ऐसा कुछ नियम नहीं, ये बात बता रहे हैं। इसलिए तो इन दो गतियों की अपेक्षा क्षपक जीव के दो गति कौन सी, देवगति और नरक गति, बहुत अच्छा, पूर्वबद्ध कर्मों को भजनीय कहा है। कहाँ पर? देखो तीन यानी मनुष्य, सॉरी देव, नारकी और तिर्यंश। पहले तो मनुष्य गति नियम से है, क्यों? क्योंकि तो क्योंकि हाँ मनुष्य हुए बिना तो जाएगा नहीं, क्षप श्रेणी चढ़ेगा। अभी तीन गति में से देव गति और नरक गति की बात करें तो देव गति और नरक गति में गए बिना भी वो जा सकता है। कर्म स्थिति के भीतर ये प्रश्न है, ये पॉइंट है, कंडीशन है। शेष रही तिर्यंच गति। सो मनुष्य गति की काय स्थिति, नितिन भाई काय स्थिति किसको कहना मालूम है आपको? भव स्थिति क्या होती है? देखो काय स्थिति का अर्थ है लगातार मनुष्य में से मरकर मनुष्य, मनुष्य में से मरकर मनुष्य, में से मरकर मनुष्य, उसको काय स्थिति कहेंगे। और भव स्थिति यानी एक मनुष्य भव, अधिक से अधिक कितना हो सकता है बोलो? नहीं नहीं नहीं, कितनी बार मैंने नहीं पूछा, एक मनुष्य भव कितना बड़ा हो सकता है? आयु एक मनुष्य की आयु कितनी अधिक से? तीन पल्ले। एक कोटि पूर्व तो संख्यात वर्ष है, 70,56,000 करोड़ वर्ष, और वहां तो मिनिमम आयु उसमें एक समय ज्यादा है, पल्ले तो असंख्यात वर्षों का काल है। ये एक भव की यानी बड़ा से बड़ा भव, और काय स्थिति ने लगातार मनुष्य में से मरकर मनुष्य हुआ, तो मान लेते करोड़ पूर्व का प्रत्येक भव पकड़ लो, हमें इमेजिन तो करना है, तो आठ पुरुष के, आठ स्त्री के, आठ नपुंसक के हुए, तो आठ 24 पूर्व कोटि हुई, बीच में एक लब्धि अपर्याप्त का भव हुआ, और फिर ऐसे आठ आठ आठ। सुनो जरा, पहले पहले उनको समझने दो, फिर एकदम लास्ट तक जाना नहीं। तो आर्थिक 24 पहले और ये 24, 48 पूर्व कोटि। अभी इसको और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में उसको भूमि का भोग रखेंगे, कितना? तीन पल्ले वाले, तो 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, ये इतने मनुष्य में लगातार रहने का काल है। और वो भी मनुष्य में मनुष्य, मनुष्य में से मनुष्य, मनुष्य में से मनुष्य कौन होगा? तो मिथ्या दृष्टि होगी, क्योंकि सम्यक तो होगा तो देव में चला जाएगा, सम्यक तो के साथ मनुष्य में जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा, तो उसके बाद तो देव पर्याय है उसकी। यहाँ क्या कहते हैं, मनुष्य गति की काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्लकों प्रमाणे। अभी जो हमने गठित किया है पूर्व कोटि पृथक्त्व में 47 पूर्व कोटि लिए, 47 पूर्व कोटि, पूर्व कोटि समझते करोड़ पूर्व, एक करोड़ पूर्व कितना होता है नितिन भाई आपको मालूम है? हाँ 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख, उसको क्या कहेंगे? पूर्व, एक पूर्व। और वो कितना, उसका कितना आते वैल्यू कितनी है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। 84 लाख वर्षों का स्क्वायर, वर्ष डालना बीच में,
एक पूर्व का।
तो 84 लाख को क्या कहते हैं अश्विन भाई? मात्र 84 लाख वर्षों को क्या कहते हैं? नहीं मालूम?
पूर्वांग
कहते हैं। तो पूर्वांग गुणा पूर्वांग इज इक्वल टू पूर्व, और ऐसे करोड़ पूर्व,
84 लाख करोड़।
वो तो एक पूर्व हुआ,
करोड़
पूर्व, एक पूर्व, दो पूर्व, लाख पूर्व, करोड़ पूर्व। तो यहाँ क्या कहते, देखो मनुष्य गति की काय स्थिति, इतने करोड़ पूर्व, हाँ इतने करोड़ काय स्थिति समझ में है ना? लगातार मनुष्य के भव करने का काल, उत्कृष्ट काल, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ल्यों, 47 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ल्य, और इसमें देव गति और नरक गति की संभव भव स्थिति को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भी वह कर्म स्थिति काल प्रमाण नहीं हो पाती। इसमें बीच बीच में नरक के और देव के भव डालते जाओ फिर भी वो कर्म स्थिति को नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात बताना चाहिए। बिल्कुल सागरों में है वो, कोड़ा कोड़ी सागरों में। और ये तो क्या, इसमें तो पल्ले में मैक्सिमम पल्ले आया, देव का भोग करें या नारकी का भी भोग कर लो बीच में तो सागरों में होगा। और कोड़ा कोड़ी सागर कितने हैं? आप कहते पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, त्रस की भी उत्कृष्ट। अभी त्रस में हम नहीं ले सकते, तीन इंच गति हो जाएगी, परंतु अकेले मनुष्य देव और नारकी तो 2000 सागर भी करेंगे। और यहाँ तो कोड़ा कोड़ी सागरों की बात है, ख्याल में है क्या कहना चाहते हैं? यानी बीच में तीन इंच को मत लो और मनुष्य देव और नारकी करते रहो तो कर्म स्थिति पूरी नहीं हो सकती, ये बात बताना चाहते। दो हजार सागर पकड़ो ना और ये तो कोड़ा कोड़ी सागरों में है। यहाँ लिखा ना, इसमें देव गति और नरक गति को संभव, नरक गति की संभव भव स्थिति, क्योंकि उसका एक ही भव होता है, उसकी काय स्थिति नहीं कह सकते, जो भव स्थिति वही उनके लिए काय स्थिति है, इसलिए भव स्थिति कहा, क्योंकि उनका बीच में एक एक भोड़ आते जाओ मनुष्यों के, इसमें इतने मनुष्यों के किए, फिर एकाद देव का किया, फिर मनुष्यों के किए, फिर नरक में गया, फिर मनुष्यों के किए, फिर भी कर्म स्थिति पूरी नहीं हो सकती। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्षपक जीव विवक्षित मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के पहले कर्म स्थिति काल के भीतर तिरियंच गति में अवश्य ही रहा होगा। देखो कैसे प्रूव किया, उसमें भी तिरियंच गति का ऐसा कौन सा भेद है जिसमें वह अवश्य रहा होगा, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय तक जितनी भी पर्याय है वे सब तिरियंच गति संबंधी ही है। अतः यहाँ कर्म स्थिति के काल को देखते हुए इतना तो सुनिश्चित कहा जा सकता है कि वह पहले एकेंद्रिय पर्याय में अवश्य रहा होगा। क्योंकि पंचेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? एक हजार साल। पंचेंद्रिय में चारों गति के पंचेंद्रिय में रहा है ना, हमने देखा था, इसलिए कहते एक इंद्रिय में निश्चित बन गया होगा। पंचेंद्रियों में रहने की त्रस का 2000 है, मैं पंचेंद्रिय अकेली बात कर रही हूँ, यानी यहाँ द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय को छोड़कर की बात है। अकेले पंचेंद्रियों में 1000 सागर,
सागर लिखना।
और त्रस की बात है, त्रस में तो अभी मनुष्य भी त्रस है, चारों गति आ गई, फिर भी 1000 सागर से ऊपर नहीं पंचे, वो तो यानी नीचे वाले उसमें गया ही होगा। यहाँ तो एकेंद्रीय की बात है, कर्म स्थिति में एकेंद्रीय पर्याय से वो आना ही चाहिए, ये बात बता रहे हैं। हाँ, त्रस में पर्याप्त अपर्याप्त सबको इंक्लूड कर दो तो साधिक 2000 सागर, त्रस यानी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय 2000 सागर, फिर भी कर्म स्थिति प्रमाण पूरा, यानी वो एकेंद्रिय में से आना ही, यानी उसके एकेंद्रिय में जो बंदी हुई वो यहाँ है, एक एक अलग काय को नहीं लिया, बस एकेंद्रिय वो एक काय से दूसरे काय में जाता रहेगा, उसकी बात नहीं है। ہو سکتا ہے کسی ایک کائے میں وہ بھجن ہی کریں گے، اکیلے ایک ایک کائے کو سیپریٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کائے میں وہ گیا ہی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. ارے وہ کشپک کے ہے تو آپ نے کیا بات، اپنا تو کھاتا کھلا ہی ہے. ایک ہزار سال خوش رسی تھی، ہزار سال ترس میں دو پردھتی سے بتے، پریاپت ترس میں دو ہزار سال اور پریاپت پریاپت سامانیہ ترس میں سادھک دو ہزار سال. یہاں ہم یہاں تک آئے نا، پنچیندری میں ایک اندری پریا میں اوشیہ رہا ہوگا. آگے پڑھیں کیا کچھ لکھنا ہے. اور یہ تتھیا سنشچت ہے، تتھیا نے فیکٹ، کیا فیکٹ ہے کہ کتیپے ایسے بھی جیو ہوتے، کتیپے نے کتنے ہی، کتیپے کا ارتھ کیا ہے، کچھ کتنے ہی ایسے بھی جیو ہوتے ہیں جو سیدھے ایکیندریہ پریائے سے آ کر، کیسے سیدھے ایکیندریہ پریائے سے آ کر اور منشیہ پریائے دھارن کر کے مکتی گامی ہوتے ہیں. تو سیدھے ایکیندریہ پریائے میں سے جب کہا ہے نیتن بھائی، تو کون سے ایکیندریہ میں سے نہیں آئے ہوگے، ہم نیم سے کہہ سکتے ہیں، اگنی اور وایو. آپ کیا کہہ رہے ہیں، سوکشم میں سے آئے ہوئے موکش آ سکتے ہیں پرنتو وہ موکش جانے، ہاں سوکشم نگوت کی بات ہے. اب یہاں دیکھیں، اتہ ترس پریائے میں گریندری سے لے کر اسنگی پنچیندری اور لبدھی پریاپت سنگی پنچیندری پریائے میں جن کرموں کا بند ہوتا ہے وے کرم اس کشپک جیو کے نیم سے ہوتے ہی، ایسا کوئی نیم نہیں ہے. کیا کہا، کس کو نیم میں سے باندھ گیا، گریندری سے لے کر اسنگی پنچیندری اور لبدھی پریاپت سنگی پنچیندری پریائے میں جن کرموں کا بند ہوتا ہے وے کرم اس کشپک جیو کے نیم سے ہوتے ہی، ایسا کوئی نیم نہیں ہے. یعنی وہ ایکیندری میں سے تو آنا ہی آیا ہی ہے، بیچ میں بیندری آدی میں اسنگی پنچیندری تک کے تیرنچ بھو نہیں کیے ہے اس میں، اور ڈائریکٹ وہ منشیہ میں آ کر موہ جا سکتا اس میں سے تو نہیں، پرنتو اس کے پورو میں اگنی وایو میں سے پرتھوی کائک میں گئے اور وہاں سے منشیہ میں آیا، تو وہاں بندے ہوئے کرم تو پائے جائیں گے. پہلے ہوتے ہیں ڈائریکٹ منشیہ میں نہیں آتا، اس لیے میں ڈائریکٹ نہیں آتا، بیچ میں دوسرا ایک تیرنچ کا بھو کر کے آ سکتا ہے. یعنی وہاں بندے ہوئے بھی پاس یعنی پائے جا سکتے ہیں، نہ نہیں اس کی، پرنتو ایکیندری پریائے میں جن کرموں کا بند ہوتا ہے وہ اس کشپک جیو کے نیم سے پائے جاتے ہیں. دیکھو ایسا کبھی ہم نے وچار کیا تھا، اتنا اوشیہ ہے کہ پرتھوی کائک آدی اتر بھیدوں میں سے ویوکشت کسی ایک کائے والے جیو کی اپیکشا ایکانت سے ایسا نیم نہیں کہا جا سکتا. کیا کہتے ہیں، ایکیندری سے آیا ہے یہ تو نیم ہے، پرنتو ایسا کوئی نیم نہیں ہے کہ پرتھوی کائک کے لیے اکیلے اس میں سے آیا ہے، اکیلے वनस्पति में बंधे हुए कर्म पाए जाते हैं अकेले, ऐसा कोई एकांत से नियम नहीं, ये बात बता दे क्यों नहीं है। हाँ अकेले पृथ्वी का एक अकेले काय स्थिति इतनी लंबी नहीं, अकेले कायिक में से किसी एक काय के लिए ये नियम नहीं लागू होता है। पृथ्वी कायिक में लगातार रहने का कितना काल है उसको यहाँ काय स्थिति में लेना, यानी वहां बंधे हुए कर्मों की जो कर्म स्थिति के भीतर वो काय स्थिति उससे छोटी हो सकती है, इसलिए किसी एक काय के लिए नियम नहीं है परंतु एक इंद्रिय का नियम है। वो पृथ्वी कायिक में या अन्य काय में गया है ऐसा ऐसा करके उसने एक इंद्रिय में बंधा हुआ तो कर्म पाया जाता है, पर किसी एक स्थावर पर ये नियम लागू नहीं होता। शेष कथन मूल टीका में स्पष्ट किया ही है। कौन से असंख्यात लोग का एक काय स्थिति में
असंख्यात लोग प्रमाण काल तक हो सकता है
तो एकांत नियम नहीं है, एकांत नियम नहीं है, पृथ्वी में से आना ही चाहिए ऐसा है। प्रश्न किससे चल रहा है? एक इंद्रिय का नियम है वैसा एक एक काय पर नियम लागू नहीं होता, ये बात है। वजन नियम में डालो ना उसे यानी ये भी हो सकता ना, उस काय में वो गया ही नहीं और उसने मनुष्य भाव पाकर अन्य चार कायिकों में घूमता रहा, यानी उसका भले एक काय स्थिति उसकी लंबी है फिर भी ये जरूरी नहीं कि उसको उस काय में से आना ही चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर मिला? ये क्या कहते हैं, पृथ्वी कायिक में लगातार रहने का काल लंबा है, कर्म स्थिति से भी बड़ा है, तो वहां से आया हुआ क्यों नहीं कहते? तो वहां से आकर जा सकता है, पर वो तो भजनीय है। हम नियम नहीं लगा सकते कि इस कायिक के लिए नियम है कि वो पृथ्वी में से पृथ्वी कायिक में से आना होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक एक का नियम नहीं है, यानी उस कायिक में से वो नियम से आया ही है ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी विशिष्ट काय में लंबे काल तक रहा है और फिर उसमें से वो मनुष्य में आकर मुक्त हो गया, हो सकता है। यहाँ एकांत नियम की बात चल रही है। अब आगे आप ही बोलो। आपको प्रश्न हो रहा है तो बाकी लोग क्या कहेंगे? पूछ रहे असंख्यात लोग बड़ा है कि 40 कोड़ा कोड़ी सागर बड़ा है, ये पूछ रहे 40 कोड़ा कोड़ी सागर बड़ा है या असंख्या। द्विरूप धारा में पल्ले के नेक्स्ट वाला स्थान कौन सा है? पल्ले का वर्ग, पल्ले का वर्ग, वर्ग धारा है ना वो, तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ बैठता है?
40 कोड़ा कोड़ी सागर तो पल्ले का वर्ग से बहुत आगे जाएगा।
कैसे जाएगा?
एक एक सागर में कितने पल्ले, कितने पल्ले? 10 कोड़ा कोड़ा पल्ले से ऊपर तो ये तो आगे पल्ले का वर्ग।
हमने पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा किया, संख्यात पल्ले हुए, और पल्ले इंटू पल्ले ने असंख्यात पल्ले हुए, तो कितने भी सागर करो उसके, ये तो इन बिटवीन आएंगे। अब लोग को कहाँ रखना, पल्ले के वर्ग 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 का तो अंगुल आएगा, अंगुल अंगुल, और लोग कितना बड़ा है वो जगत श्रेणी, और फिर जगत श्रेणी का घन वो लोक है, एक लोक, ऐसे असंख्यात लोक। अब इसके तो अभी और स्पष्टीकरण करेंगे। अब हम आए 118 पृष्ठ पर। अब इस गाथा के इस प्रकार के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के विभाषा ग्रंथ को कहते हैं विहासा। अब इसकी विभाषा करते हैं, यह सूत्र सुगम है। इस क्षपक के दो गतियों में अर्जित किया हुआ कर्म नियम से सुगम, हाँ ऊपर पढ़ना रह गया, एदस्य खवगस्य दुगति समज्जिदं कम्मं नियमाति तं जः तिरिक्खगति समज्जिदं च मनुष्यगति समज्जिदं च। समज्जिद ने समर्चित अर्चित किया ना, उसने अर्जित कहा, अर्चित कहते हैं ना, अर्जित उपार्जित कमाया हुआ, उपार्जन कहते मालूम है, धन कमाना, धन उपार्जन करना, ये क्या कमाया उसने कर्म। इस क्षपक के दो गतियों में अर्जित किया हुआ कर्म नियम से है, वह जैसे तिर्यंच गति में अर्जित किया कर्म भी है और मनुष्य गति में अर्जित किया कर्म भी है। अब इसे देखेंगे, अभी ये बात ख्याल आती है कि जब हमने क्षपित कर्मांश गुणित कर्मांश को देखे थे हमेशा, तो कर्म स्थिति प्रमाण काल उसमें रहा ऐसा, फिर रस में आया आदि आदि बातें हमने कितनी बार उसमें पढ़ी थी, वहां भी कर्म स्थिति शब्द कितनी बार आया था ना, इतने लंबे काल तक एक इंद्रिय में रहा, वहां से निकला मनुष्य हुआ जो कुछ। देखो अभी यहां देखते आगे, कृष्टिकरण से लेकर उपरिम अवस्था में विद्यमान इस जीव के दो गतियों में अर्जित किया हुआ कर्म नियम से है, इस प्रकार ऐसा सामान्य निर्देश करने से विशेष का निर्णय नहीं हो सकता, यानी कौन सी दो गतियां हैं इसका निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए वहीं पर विशेष का निर्णय करने के लिए तिर्यंच गति में अर्जित किया कर्म भी है और मनुष्य गति में अर्जित किया कर्म भी है ऐसा विशेष रूप से निर्देश किया है, ये सूत्र में बता दिया। शंका, दो गतियों में अर्जित किया गया कर्म इस क्षपक के भजनीय नहीं है, इस प्रकार भाष्य गाथा द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश करने से तिर्यंच गति और मनुष्य गति विशेष पर्याय का ग्रहण कैसे होता है, क्योंकि मूल गाथा में तो दो गति की बात आई थी भजनीय करके, या भजनीय नहीं है और भजनीय है दो गति में, तो उनके नाम आपने कहां से निकाले। समाधान, यहां ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है, इस न्याय के अनुसार उस प्रकार के विशेष की सिद्धि होती है, यानी परंपरा आचार्यों के जो उपदेश है व्याख्यान है अवेलेबल, उस पर से ज्ञात हो जाता है। वहां तिर्यंच गति में समर्जित किया गया कर्म नियम से है ऐसा कहने पर तिर्यंच गति से आकर मनुष्य गति में ही उत्पन्न होकर क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए जीव के तिर्यंच गति में संचित हुआ कर्म निश्चय से प्राप्त होता है, परंतु जो तिर्यंच गति से निकलकर शेष गतियों में कितने लिखा है 100 पृथक्त्व सागरोपम काल तक रहकर, ओ पृथक्त्व 100 मैंने, हाँ हजार सागर वैसे मैंने बताए थे ना, वो तो मैक्सिमम संग क्यों तो यहाँ तीन गति में भी रहने का उतना ही है ना, उसमें यहाँ कहाँ कंडीशन है, अलग अलग बातों के लिए वही काल हो सकता है, उसकी कहा नहीं हाँ, अब नरक गति में थोड़ा ही पुरुष वेद में रहने वाले, तिर्यंच गति छोड़कर अन्य गतियों में रहने का उत्कृष्ट काल बता रहे। तो शेष गतियों में सौ पृथक तो सागरोपम काल तक रहकर, यानी कुछ सागर वर्ष, कुछ सौ लगाना उसके पीछे। हमने पंचेंद्रिय के सभी चारों गति के पंचेंद्रिय लिए तो कितना हजार सागर लिया था, यानी दस सौ सागर हुए ना, 1000 हुए। अब यहाँ पृथक तो सौ है, 700-800। तो पृथक्त्व सौ सागरोपम काल तक रहकर, यानी अन्य तीन गतियों में कितना अधिक से अधिक रह सकता है पृथक्त्व सौ सागर, शेष गतियों में, तीन गतियों में। शपक श्रेणी पर आरोहण करता है उसके भी तिर्यंच गति में अर्जित किया गया कर्म इस शपक के नियम से है। क्या कहना चाहते हैं? कोई तो तिर्यंच गति से निकलकर देवनारकी हुए बिना मनुष्य होकर मोक्ष जा सकता है, परंतु ऐसा भी जीव कंसीडर करो, तिर्यंच गति छोड़कर बहुत काल बीत गया, वहां से वो देव में गया, मनुष्य में आया, देव मनुष्य नरक करते रहा करते रहा करते गए, तो फिर भी तिर्यंच गति में जो उसने कर्म बांधा था वो अभी भी विद्यमान है, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक कितना सौ पृथक्त्व सागर काल बिताए। क्योंकि तिर्यंच गति में अर्जित होकर कर्म स्थिति में हुए संचय का पूरी तरह से निर्लेपन नहीं होता, यानी जो उसने कर्म बांधा था उसकी और जो इकट्ठा होते गया था वो पूरे तरह से अभी निकल नहीं गया, उसको उसका उदय होकर निकल नहीं गया, परंतु मनुष्य गति में संचित हुआ कर्म जिस किसी गति में कर्म स्थिति का पालन करके आए हुए क्षपक जीव के निश्चय से है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से अपरिणत हुए जीव के क्षपक श्रेणी पर आरोहण करना संभव नहीं है, जो मनुष्य गति में ही होती है क्षपक श्रेणी, अन्यथा तो है ही नहीं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा दोसुच गतिसु अभुज्जानी गाथा सूत्र के इस अवयव की विभाषा करके, अब दोसु भज्जानी सूत्र के इस अवयव की विभाषा करते हुए इस सूत्र को कहते हैं, यानी दो भजनीय नई यानी नियम से, कौन सी दो? मनुष्य गति और तिर्यंच गति दो। अब कहे देव गति समज्जिदम च निरय गति समज्जिदम च भजी यौवन, देव गति में अर्जित हुआ और नरक गति में अर्जित हुआ कर्म इस क्षपक के भजनीय है। शंका, इसका क्या कारण है?
एक सागर वहाँ पे बहुत लंबा था, लेकिन जेटिव वहाँ पे बंद तो नहीं, एक सागर मनुष्य बनाया था, मनुष्य के जैसे उसने देव गति का पुष्प बन किया था, एक सागर और तेतीस सागर में वो तीर्थ गति का तो सभी निकल गया और नेक्स्ट रूम में मनुष्य के नोक्स गया, ऐसा नहीं हो सकता है?
ऐसा होता तो बताते ना,
ऐसा क्वेश्चन होता हो सकता है कि नहीं,
होता तो बताते कि तिर्यंच गति भी भजनीय है। क्या कहा? ऐसा तो बताते ना वो, एकेंद्रिय में लंबा काल आपने कहा, लंबे काल तक एकेंद्रिय में रहा, एकेंद्रिय में रहने का लंबा काल कितना है? हाँ, संख्या तो वो एकेंद्रिय 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 में ही रहा, एक सागर का बंद किया। हाँ,
कोई भी तेरी जीवन का एक सागर मैक्सिमम, अभी वो एक सागर जैसे निकला मनुष्य का,
ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये सूत्र से ही सिद्ध होता है, सूत्र ही उसके लिए प्रूफ है, सूत्र ही प्रूफ है कि वहाँ बंधा हुआ तो कर्म इसके पाया जाएगा ही। तिर्यंच गति की बात है, तिर्यंच गति का कर्म न हो और वो मोक्ष जाए ऐसा होगा नहीं, इस बात को स्वीकार करके हम आगे बढ़े। अब उसके लिए क्या कारण हो सकता है उसको सोचे, हम उल्टे पद्धति से सोचना चाहते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं होता। हाँ तो उसकी अगर कहीं बात आती है तो बताएंगे फिर आगे। एक सौ 119 पृष्ठ पर चल रहे कि तिर्यंच गति और मनुष्य गति में अर्जित किया कर्म नियम से होता है और देव गति और नर गति में अर्जित किया हुआ कर्म इस क्षपक के भजनीय है। ये दो बातें हुई शंका, इसका क्या कारण है? क्योंकि देव गति और नरक गति में न जाकर तिर्यंच और मनुष्य गति में ही कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहकर क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए जीव के उन दोनों गतियों में अर्जित हुआ कर्म नियम से नहीं पाया जाता। अतः जो जीव देवगति और नरगति में प्रवेश करके और वहां कितने ही काल तक रहकर पुनः तिर्यंचों में प्रवेश करके क्या कहा, देव या नरगति में गया था, वहां कितने ही काल तक रहा था, फिर तिर्यंचों में आया, कर्म स्थिति प्रमाण काल द्वारा या उससे अधिक काल द्वारा नरक गति और देवगति संबंधी संचय को गलाकर, यानी कर्म स्थिति से भी अधिक काल तो एक इंद्र में या कहो तिर्यंचों में रहा और देवगति नरक गति के परमाणु गल गए, क्योंकि वो तो कर्म स्थिति से अधिक नहीं रह सकते हैं, पुनः मनुष्यों में आकर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है, उसके भी नरक गति और देवगति में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म का एक भी परमाणु इस क्षपक के नहीं पाया जाता, क्योंकि कर्म स्थिति के बाद उसके भीतर हुए संचय का क्षपक के अवस्थान होने का विरोध है। परंतु जो जीव नरगति और देवगति में प्रवेश करके वहां कितने ही काल तक रहकर निकला तथा कर्मस्थिति प्रमाण काल के भीतर ही अविनष्ट हुए उस संचय के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़ता है, यानी क्या है, वो तो तिर्यंच में से निकला था, देव में गया था या नरक में गया था और उसके वो कर्म अभी है सत्ता में और वो क्षपक श्रेणी चढ़ा है मनुष्य होकर, तो उसके तो नरक गति और देव गति में संचित हुआ कर्म तो इस क्षपक के नियम से होगा, क्योंकि नरक गति और देवगति में जो संचय किया था इन्हें बांधा था और वो बांधता गया और कर्म स्थिति काल उसका पूरा नहीं हुआ तो सत्ता में पड़ा है, उसे गलाए बिना ही वह जीव क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ है, इसलिए देवगति और नरक गति में संचित हुआ कर्म इस क्षपक के भजनीय है यह सिद्ध हुआ। यहाँ पर तिर्यंच गति और मनुष्य गति में हुए संचय को ध्रुव करके, ध्रुव ने जो नियम से उसको ध्रुव कहेंगे और जो नियम से नहीं हो सकता हो भी सकता नहीं उसको भजनीय कहेंगे, शेष दो गतियों में हुए संचय उनके एक संयोग और द्विसंयोग की अपेक्षा तीन भंग उत्पन्न करने चाहिए तथा द्रौपद के साथ चार भंग होते हैं। यानी अभी दो गति को फिक्स रखा, मनुष्य गति और तीन इंच गति, ये तो ध्रुव हुआ तो वो एक भंग, फिर मनुष्य यानी मनुष्य तीन इंच और देव को लिया, मनुष्य तो फिक्स रखना ही है ना, और तीन इंच को भी रखना है, वो तो ध्रुव हुआ, तो फिर यहाँ लिखा ना एक संयोग और द्विसंयोग की अपेक्षा तीन भंग उत्पन्न करने चाहिए। कैसे तो तीन भंग हो गए, ये मनुष्य तिरंज और देव वो एक हुआ, तिरंज मनुष्य नर, तिरंज मनुष्य देव नर के, क्या कहा, एक तो ध्रुव है, अकेला तिरंज मनुष्य होकर वो मोक्ष चला जाए, ये तो ध्रुव भंग, तिरंज मनुष्य तो फिक्स रखना, तो तिरंज मनुष्य और देव वाला एक भंग, तिरंज मनुष्य नरक वाला दूसरा भंग, तिरंज मनुष्य देव नरक एक तीसरा भंग, ये तीन भंग भजनीय और पहले वाला ध्रुव, चार भंग टोटल हो गए। कल में ये बात विशेषार्थ देखो, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है यहाँ कर्म स्थिति यानी वो आप जो पूछ रहे थे ना एक सागर वाली, एक सागर का बंद किया था अभी आपका प्रश्न था ना, एक इंद्रिय में लंबा काल रहा, हताहत नहीं भी हुआ क्योंकि उसने जो कुछ पंचेंद्रिय में बांध कर आया था तो उसका तो नष्ट हो गया उसकी कर्म स्थिति में, एक इंद्रिय में उसने एक सागर बंद किया ऐसा आप कह रहे हैं और वो जीव आया, परंतु उसकी कर्म स्थिति यानी पूरी 40 कोड़ा कोड़ी लेना शक्ति स्थिति उस अपेक्षा से लेना, क्योंकि ये बात उसमें भी आई थी गुणित कर्मोशिक में भी। भजनी इसलिए बोला कि तिर्यंच गति में से मनुष्य होकर कोई डायरेक्ट मोक्ष जाता है तो उसने देव में कभी गया होगा, उसका सत्ता उसकी होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं,
क्योंकि ये प्रकृति में अपने देव भी तो
उसकी बात नहीं, उन गति की बात नहीं है, देव गति के परमाणु की बात नहीं है, देव गति में बंधे हुए कर्मों की बात है, आप अलग ले रहे उसको, ये देव गति में ये जीव जब देव हुआ था उस समय जो कर्म बंधे थे वो सत्ता में है कि नहीं उसकी बात चल रही है, और यहाँ तो मुख्यतः मोहिनी की बात चल रही है ना, ये जो अभी उसके पृष्टि वेदक के और कारक वाले के जो सत्ता में कर्म पड़ा है वो कब बंधा हुआ था उसकी बात है, तो कौन से गतियों में वो नियम से हो गई, तो कहते कोई तीर इंच में से आया है और लंबे काल तक मनुष्य देव और नारकी ही रहा है और मोक्ष चला गया, तो ऐसा हो सकता है ना, मेरा क्या कहना है, ऐसा हो सकता है कि उसके तीन इंच गति के बांधे हुए परमाणु है ही नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर की है और यहाँ रहने का उत्कृष्ट काल 2000 सागर है, ऐसा ही पहले आई थी एक बात है, शपित कर्मांशिक गुणित कर्मांशिक निकाल के उसमें बार बार कर्म स्थिति, वहां तो 70 कोड़ा कोड़ी की ली थी कर्म स्थिति बार बार जो कहते थे वहां तो 70 कोड़ा कोड़ी को कर्म स्थिति कहा, कि वहां मिथ्या तो कर्म की बात यहाँ वो लागू नहीं हो रहा है, विचार करना आप, अभी आगे इसका और देखेंगे समाधान आएगा कहीं पर, देखो ये विशेषार्थ हम पढ़ रहे थे 120 पेज पर, कोई जीव पहले नरक गति में था पुनः वहां से निकलकर तिरंज गति में होता हुआ मनुष्य गति में आया, यह एक भंग है। तिरंज मनुष्य तो फिक्स रखना है। कोई जीव पहले देव गति में था, पुनः वहां से निकलकर तिरंज गति में होता हुआ मनुष्य गति में आया, यह दूसरा भंग है। तथा कोई जीव नरक से निकलकर तिरंज या मनुष्य होकर देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, वहां से आकर तिरंज गति में उत्पन्न होकर मनुष्य हो गया, इस प्रकार तिरंज गति और मनुष्य गति को ध्रुव करके नरक गति और देव गति का अवलंबन करके उक्त तीन भंग उत्पन्न होते हैं। यानी यह मनुष्य तिरंज और देव क्या होगा, मनुष्य तिरंज नरक का या मनुष्य तिरंज नरक देव सबका, ये तो तीन भंग। ध्रुव भंग तो अलग छाई था। इन तीन भंगों में ध्रुव भंग के मिला देने पर कुल चार भंग होते हैं। ये चारों भंग दोनों अपेक्षाओं से बन जाते हैं, यह यहाँ विशेष समझना चाहिए। इस प्रकार इसकी विभाषा करके अब एकेंद्रिय और पांचों काय मार्गणाओं में संचित करना इस क्षपक के भजनीय है। इस सूत्र के अवयव की विभाषा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। एकेंद्रिय तो नियम से होता ही है, परंतु एक एक काय की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो उस काय में बंधे हुए परमाणु यहाँ पाए ही जाते, ऐसा नियम नहीं करेंगे। इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। और कुढ़वी काय, आहु काय, तेहु काय, वाहु काय, वनस्पति काय, येसु तत्व एक एक के न कायेन समज्जितम भजियोगम। एक एक काय को सेपरेट अगर कंसिडर करना है तो ये कोई नियम नहीं है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन पांचों में से एक एक काय के द्वारा समर्जित किया गया कर्म, ये सत्ता में वो प्रकृति है कि नहीं, ये बात नहीं चल रही है। सत्ता में स्थावर नाम कर्म है कि नहीं, एकेंद्रीय नाम कर्म है कि नहीं, उसकी बात नहीं है। उस पर्याय में बांधा हुआ कर्म यहाँ है कि नहीं, उसकी बात चल रही है। दोनों में डिफरेंस है। तो कहते वो क्षपक के भजने, एक एक काय को सेपरेट कंसिडर करेंगे तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस काय में से आना ही चाहिए वहां बंधा हुआ। इन पांच स्थावर कायिकों में से एक एक कायिक जीव के द्वारा समर्जित कर्म इस क्षपक के स्यात है और स्यात नहीं है, यह उक्त पतन का तात्पर्य है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस पर से एक एक के न काय न यह विशेषण इन काय वाले जीवों में से प्रत्येक के साथ विवक्षित करके इस भजनीय पने की योजना कर लेनी चाहिए, यह उक्त कथन का फल है। क्योंकि समुदाय की मुख्यता से वहां हुए संचय का अन्यतर काय के संबंध से क्षपक जीव के अवश्य ही पाए जाने रूप नियम देखा जाता है। यानी वो समुच्चय रूप पांचों स्थावर कायिकों की इकट्ठा कंसिडर करके एकेंद्रियों का तो नियम बताया, परंतु एक एक कायिक के साथ ये नियम नहीं लगा सकते। इसलिए एक एक स्थावर कायिक जीव को अधिकृत करके वहां हुए संचय की भजनीयता इस प्रकार जाननी चाहिए। वह जैसे, अब वो भी समझा रहे, विवक्षित काय में से निकलकर जब तक कर्म सिद्धि समाप्त होती है तब तक शेष कायों में रहकर पुनः मनुष्यों में आकर क्षपक शनि पर चढ़े हुए जीव के विवक्षित काय में संचित हुए कर्म प्रदेश पिंड का एक भी परमाणु नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं विवक्षित काय? क्या ऐसी जरूरी है कि पृथ्वी कायिक में बंधा हुआ कर्म यहाँ होना ही चाहिए? तो कहते पहले पृथ्वी कायिक में रहा, फिर उसमें से अन्य कायिक में गया। अन्य कौन कौन से कायिक है नितिन भाई? पृथ्वी कायिक में था, अन्य कायिक में गया, तो कौन से अन्य कायिक में गया? पृथ्वी को छोड़ो ना, बाकी चार के नाम ले लो। वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक है ना। तो पहले पृथ्वी का एक में लंबे काल तक आप जो काय स्थिति लगा उत्कृष्ट वहां तक था, फिर उसमें से निकलकर वनस्पति में गया, निगोल में गया ना, अभी डाई पुद्गल परावर्तन तो वहां भेज दो उसको। तो उसके पृथ्वी कायिक में बंधे हुए की कर्म स्थिति पूरी हो गई, अब उसका एक भी परमाणु नहीं है और फिर वहां से वो मनुष्य होकर मुक्त चला, ये पॉसिबल है। यानी वो पृथ्वी कायिक में बंधे हुए परमाणु है भी या नहीं भी है, ऐसे दोनों पॉसिबिलिटी। ऐसे एक एक काय को सेपरेट लगाओ तो उसका कोई नियम नहीं है, परंतु इन जनरल एक इंद्रिय का तो नियम है, किसी न किसी एक इंद्रिय पर्याय में बंधे हुए कर्म की अपेक्षा, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय के लिए तो नियम है, कायिकों के लिए ऐसा नियम नहीं है, ये बात बताना चाहिए।
सर क्यों? क्योंकि वो 10 किसी 2000
एक इंद्रिय में से आता है तो उसकी काय स्थिति पूरी नहीं होती त्रस में, परंतु कायिकों के लिए ऐसा नियम नहीं, अन्य कायिकों में से आया है वो, कायिकों में ये नियम नहीं लगता। यानी एक पृथ्वी काय में से अन्य कायिकों में चला गया, एक इंद्रिय में अभी, तो कर्म स्थिति प्रमाण वहां भटकता रहा, तो पृथ्वी कायिक में बंधा हुआ तो निकल गया और वहां बंधे हुए उसके पड़े रहेंगे। एक इंद्रिय में से त्रस में आया है तो त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? 2000 साल। तो कर्म स्थिति तो इतनी बहुत बड़ी है उससे, कर्म स्थिति उनका बंध स्थिति बंध नहीं पूछा, कर्म स्थिति होती है 40 कोड़ा कोड़ी की, चारित्र मुनि में वो तो कोड़ा कोड़ी सागर और ये तो है 2000 सागर। देखो कर्म एक भी परमाणु नहीं पाया जाता, हम आए 121 पर। परंतु जो जीव विवक्षित स्थावर काय में से निकलकर, विवक्षित स्थावर काय पर्टिकुलर एक कर्म स्थिति के भीतर ही मनुष्यों में उत्पन्न होकर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है, उसके विवक्षित स्थावर काय में पूर्वबद्ध कर्म प्रदेश पुंज कुष्ठियों में नियम से पाया जाता, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? दो पॉसिबिलिटी बताए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं कब हो सकता है? हम पृथ्वी कायिक एक की बात करेंगे, पृथ्वी कायिक में भले बहुत टाइम से था या कहीं भी उसने वहां कर्म बांधा, उसमें से जल कायिक हुआ, अग्नि कायिक हुआ, वायु कायिक हुआ, वनस्पति कायिक हुआ, पृथ्वी कायिक बीच में हुआ ही नहीं लंबे काल तक, तो उसके कर्म वहां बंधे हुए कर्म स्थिति निकल गई तो वो परमाणु सब चले, एक भी परमाणु अवेलेबल नहीं। अब वहां से वो निकला, त्रस में आया, मनुष्य होकर मोक्ष भी चला गया। यानी जब क्षपक श्रेणी पर कृष्टि वेदक और कृष्टि कारक के समय पर उसका पृथ्वी कायिक में बंधा हुआ एक भी परमाणु नहीं, ये हो सकती है बात, इसको कहेंगे भजनीय। पृथ्वी कायिक में से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है, वहां बंधे हुए कर्म पाए भी जाते हैं, परंतु नहीं भी पाए जाने का वहां ऑप्शन हो सकता है, ये बात बताए। इन जनरल एक इंद्रियों में ऐसा नियम नहीं होगा, वो तो नियम से वो परमाणु रहेगी ही रहेगी नियम से। पूर्व चौथी लाइन, पूर्वबद्ध प्रदेश पुंज होता हुआ भी, अब जिसके पाए जाते हैं उसके कितने हो सकते हैं? एक परमाणु हो सकता है, दो परमाणु होते हैं, इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से अनंत परमाणु तक होते हैं। सभी कृष्टि जो सभी स्थितियों में, सभी कृष्टियों में और उनके सब स्थिति विशेषों में प्राप्त होते हैं, सब ले लिया, स्थिति विशेष निषेकों में भी लिया और कृष्टियों में भी लिया। विशेषार्थ यद्यपि
परमाणु के सब में कैसे आ जाए?
हाँ,
एक ही परमाणु है,
एक निषेक में वैसा नहीं लेना, प्रत्येक निषेक में ले लो ना, कहीं भी एक परमाणु हो सकता है उसका। यहाँ क्या लिखा? उत्कृष्ट रूप से अनंत परमाणु है, उत्कृष्ट रूप से एक के लिए नहीं, उत्कृष्ट रूप से अनंत है वो। कहाँ अनंत हो सकते हैं? प्रत्येक पृष्टि में भी अनंत हो सकते हैं, प्रत्येक निषेक में अनंत हो सकते हैं। वहाँ का बंधा हुआ यहाँ है कि नहीं है इसकी बात है। उनका क्वेश्चन था एक परमाणु सभी कृष्टियों में कैसे हो सकता है, ये उनका प्रश्न। ये सत्ता में है कि नहीं उसकी बात चल रही है। सभी कृष्ण में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अभी वहां से निकला है, पृथ्वी का एक में से निकला है, मनुष्य होकर मोह जा रहा है, तो सभी कृष्णियों में सभी परमाणु पड़े उसके। हाँ, कहीं पर एक जगह होगा, किसी एक जगह होगा। विशेषण, यद्यपि प्रत्येक काय वाले जीव की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोकों के समय प्रमाण, आपने पूछा था ना, असंख्यात लोग समझते हैं, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, ऐसे कितने लोग? असंख्यात लोग। एक लोक में परमाणु कितने होते हैं? परमाणु नहीं, यहाँ तो प्रदेश कहना है। जब ये संख्या बताते हैं तो वहाँ परमाणु की संख्या नहीं मापते, किसके? प्रदेशों की। जब हम लोक ये माप बनाया हमने, तो वो माप क्या दिखाता है? लोक में जिसके जितने प्रदेश है उतनी संख्या, इसको उपमा मान कहते हैं। मैं उदाहरण देती हूँ, एक कटोरी में 1000 चावल है, तो 1000 के लिए हमने क्या यूनिट बनाए? कटोरी। तो हम कहेंगे 10 कटोरी, तो उसका अर्थ कितने हुआ? 10000 हुए ना, एक में 1000 तो 10 में 10000 हुए। तो ये हमने उसकी उपमा दी, 1000 संख्या के लिए हमने कटोरी कह दिया। ऐसे ही यहाँ पर लोक में जितने प्रदेश है असंख्यात, उस विशिष्ट असंख्यात का नाम क्या है? लोक। जैसे एक लोक, दो लोक, कितने लोक? तो असंख्यात लोक। तो असंख्यात लोगों के जितने प्रदेश होते उतनी संख्या में, यानी उतने समय लेना अभी आप, ये जीव लगातार उस पर्याय में रहा, उस कायिक में रहा, तो उसको कहेंगे असंख्यात लोक प्रमाण समय। ये उसका उस पर्याय में, कौन सी पर्याय? पृथ्वी कायिक हो या अग्नि कायिक हो, वायु कायिक हो, उसमें लगातार रहने का काल। इसलिए यहाँ क्या लिखा? प्रत्येक काय वाले जीव की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोकों के समय प्रमाण है। परंतु यहाँ प्रत्येक काय वाले जीव में संचित हुए पूर्वबद्ध कर्म का क्षपक जीव के भजनीयपना कैसे घटित होता है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर मूल टीका में उक्त प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब नचतसेसु, इस प्रकार उक्त भाष्य गाथा के इस अवयव की विभाषा करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। तस्कायम समज्जिदम नियमा अत्थि, भजनीय नहीं है ने नियम से है, तो तरसकाय जीव में समर्जित कर्म इस क्षपक के नियम से पाया जाता है, क्योंकि जिस पर्याय में मनुष्य में तो कर रहा है वो तो मनुष्य तो भी तो तरसी तो है, तो लंबे काल एक इंद्र में से लेकर डायरेक्ट मनुष्य में आकर मोक्ष जा सकता है, परंतु तो मनुष्य में आया तो ये त्रस में आया, और वहां बंधा हुआ तो कर्म पाया ही जाएगा, तो उसके लिए भजनीय वाले नियम नहीं, वो तो नियम से है। जब तक त्रस्काय में जन्म नहीं लेता तब तक क्षपक नहीं होता, क्योंकि मनुष्य त्रस ही है, तो मनुष्य में तो जन्म लेना ही पड़े उसके। इस कारण त्रस्कायिक में समर्जित कर्म इस क्षपक के नियम से पाया जाता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर तरसकायिक में समर्जित कर्म को ध्रुव करके, देखो काय मार्गना की अपेक्षा कितने भेद होते हैं मालूम है? काय मार्गना की अभी याद नहीं, याद नहीं। नितिन भाई आपको याद है?
दो भेद ना, त्रस और चाय।
हाँ, काय मार्गणा में पूरे, हाँ काय कितना अमुक काय वाला तमुक काय वाला ऐसे कितने भेद होंगे, पांच तो छह बोलना आपको, छठ का एक कहो ना, छठ का एक शब्द आता है ना, तो वहां तो स्थावर नहीं कहना, पृथ्वी काय का भेद उसको मुख्य करना है, पृथ्वी का एक अलग बात है, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक, तो काय मार्गणे की अपेक्षा छह भेद है। तो यहाँ कहते हैं स्थावर के एक एक काय का कोई नियम नहीं है, परंतु त्रस काय का तो नियम है। तो त्रस काय में समर्जित कर्म को ध्रुव करके, यानी वो तो नियम से है इसलिए वो ध्रुव भंग कहेंगे उसको, ध्रुव करना है ने? वो भंग तो होता ही है, और उसके साथ और किसी अन्य अन्य काय को लगा लो। पुनः शेष कायों के साथ एक संयोगी आदि के क्रम से प्राप्त हुए भंग 31 होते हैं। कैसे करेंगे 31?
हाँ,
दो बार पांच करके, पांच बार दो का, हाँ दो 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 दो, और उसमें से एक माइनस करो। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, त्रस का एक तो ध्रुव है ही है, और उसके साथ अब एक इंद्रिय का तो ध्रुव था, परंतु उसमें से एक एक काय को ले लो, क्योंकि किसी एक काय में से आया हुआ भी हो सकता है, तो अकेले एक एक काय को रखो, यानी त्रस वाला त्रस के साथ पृथ्वी का एक रखो, त्रस के साथ अग्नि का एक रखो, तो वो तो पांच हो जाएगा। अब उसमें से त्रस के साथ पृथ्वी और अग्नि रखो, और पृथ्वी वायु रखो, पृथ्वी, तो ये इस तरह से बढ़ते चलेगा, ये टोटल भंग 31 हो जाएगी। हो सकता है पांचों स्थावर भी ले लो और ये भी ले लो, ये हो सकता है। तो लास्ट वाला जो छह संयोगी वाला एक भंग हो जाएगा, सभी काय कुंभ के वहां पाए जाते हैं। विशेषार्थ, यहाँ त्रस कायिक में अर्जित कर्म ध्रुव है, उसका अन्वय सब भंगों में होगा, अन्वय ने कंटिन्यूटी, यानी बिना त्रस के एकमात्र पृथ्वी में से आया हुआ ऐसा नहीं होगा, त्रस के साथ पृथ्वी लगाना, त्रस के साथ ऐसा लगाना, इसलिए उसे ध्रुव रखकर शेष पृथ्वी कायिक आदि पांच की अपेक्षा क्रम से एक संयोगी पांच, द्विसंयोगी दस, तीन संयोगी दस, चार संयोगी पांच और पांच संयोगी एक, इस प्रकार कुल 31 भंग प्राप्त होते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह षट का एक है, इसलिए छह बार दो दो नहीं लिखना है, क्योंकि वो षट का एक में त्रस का एक तो ध्रुव रखना है, और इन पांच के अपेक्षा भजनीयपना है, इसलिए इनको ले लेना। क्या क्या ध्रुव के साथ ये छह है ना, ध्रुव के साथ पांच लगाना है,
पांच और ध्रुव एक से
वो लिया ना उसमें, ध्रुव रख कर लिखा है, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, वो तो है ही है, ध्रुव तो है ही, उसके साथ पांच अलग संयोग लगाना है, तो टोटल तो छह का ही होगा, यानी अकेला त्रस का तो हो ही नहीं सकता है, तो त्रस के साथ एक एक को ले लेना, किसी किसी को, तो पांच में से एक एक को लिया हमने, एक को लिया तो एक में भी पांच डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, फिर दो दो लिए, तीन तीन लिए, इस तरह से। अब यहीं रुकेंगे हम, जावानी के ज्ञान ते सुजे लो कालो सोवानी मस्तक न हो सदा लेत हो। अश्विन।